नमस्कार भारत, तारीख 3 जुलाई, दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। थाईलैंड में बचाव दल ने 9 दिन से लापता 12 लड़कों और उनके कोच को तलाशा, अब गुफा से बाहर लाने की चुनौती। राजस्थान में 1% आरक्षण के ऐलान के बाद भी क्यों नाखुश है गुर्जर समुदाय।
हम लोग मांग कर रहे हैं हमें ओबीसी के अंदर वर्गीकरण करके रिजर्वेशन दी, लेकिन सरकार बार बार गुमराह करके हमारी सही जो जायज मांग है उस जायज मांग से गुमराह कर रही है।
और खास रिपोर्ट दिल्ली के उस इलाके से जो कहलाने लगी है कैंसर कॉलोनी।
अगर अपने ऊपर खर्चा करती हूँ तो घर पे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहता, और अगर नहीं करती हूँ तो जीने की उम्मीद हर किसी को मरते टाइम तक भी ये रहता कि हमें जिंदगी और दे।
खबरें वर्ल्ड कप फुटबॉल की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। थाईलैंड की एक गुफा में 9 दिन से फंसे 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच के जिंदा मिलने के बाद अब बचाव दल के सामने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती है। ये बच्चे 9 दिनों से लापता थे, जिन्हें खोजने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। अंधेरी पानी से भरी गुफा में फंसे इन बच्चों के पास बर्तानी गोताखोरों के पहुंचने का नाटकीय वीडियो जारी किया गया है, जिसमें बच्चे गुफा के भीतर एक सूखे स्थान पर सिकड़े हुए दिख रहे हैं। अब बच्चों के पास खाद्य सामग्री और चिकित्सीय मदद पहुंचाई जा रही है। बचाव कर्मियों को फैसला करना है कि बच्चों को पानी से भरी गुफा से बाहर निकाला जाए या उनके शरीर में शक्ति आने और पानी को बाहर निकाले जाने का इंतजार किया जाए। जर्मनी के गृहमंत्री हॉस्ट ज़ेहोफर ने चांसलर अंगेला मर्केल के साथ हुई लंबी बैठक के बाद प्रवासी मुद्दे पर पद छोड़ने की अपनी धमकी वापस ले ली है। ज़ेहोफर ने बताया कि सरकार में शामिल दोनों कंजर्वेटिव पार्टियां ऑस्ट्रिया की सीमा से जर्मनी में आने वाले प्रवासियों की संख्या सीमित करने को लेकर समझौते पर पहुंच गई हैं। मर्केल ने कहा है कि जर्मनी में ट्रांजिट कैंप बनाए जाएंगे, जहां से प्रवासियों को उन देशों में भेज दिया जाएगा जहां उन्होंने सबसे पहले शरण का आवेदन दिया हुआ हो। मर्केल ने कहा, हम राष्ट्रीय उपाय करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम जहां प्रवासियों के सबसे पहले पहुंचने वाले देशों और अन्य देशों के साथ सहयोग भी करना चाहते हैं। हम ठीक ऐसा ही करेंगे, हम जर्मनी में ट्रांजिट सेंटर स्थापित करेंगे और वहां से उन्हें दूसरे देशों के साथ हुए समझौते के तहत प्रवासियों को वापस भेजेंगे जहां उन्होंने शरण की अर्जी दे रखी है और उनका पंजीकरण हुआ है। मैक्सिको के नए निर्वाचित राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रवासन कम किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप और लोपेज ओब्राडोर के बीच फोन पर वार्ता हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मैक्सिको के नए राष्ट्रपति सीमा की समस्या को सुलझाने में अमरीका की मदद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर दीवार बनाने के फैसले के बाद से अमेरिका और मैक्सिको के बीच रिश्तों में कड़वाहट आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, मैंने मैक्सिको के निर्वाचित राष्ट्रपति से बात की है, ये आधे घंटे लंबी अच्छी बातचीत रही। हमने सीमा सुरक्षा के बारे में बात की, व्यापार के बारे में बात की, हमने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बात की और हमने सिर्फ मैक्सिको और अमेरिका के बीच अलग समझौता करने के बारे में भी बात की। हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की हैं, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वेनेजुएला में देश भर में हुए समारोह में सरकार ने 16,000 सैन्य बलों को पदोन्नत कर दिया है। रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पेड्रिनो ने कहा है कि सैन्य बलों को उनकी निष्ठा का इनाम दिया गया है। रक्षा मंत्री ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आलोचना के बावजूद सैन्य बलों की मानवाधिकार का सम्मान करने के लिए भी सराहना की है। राष्ट्रपति निकोलास माडुरो मई में हुए चुनावों में नए कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खाली हुए जज के पद को भरने के लिए 4 उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। थाईलैंड में बीते 9 दिन से 11 से 16 साल की उम्र के 12 लड़के और उनके फुटबॉल कोच लापता थे। ये सभी गुफा घूमने गए थे और वहीं फंसकर रह गए। पूरे थाईलैंड में उनकी सलामती के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही थीं और कल बचाव दल ने उन्हें तलाश लिया। बचाव दल इन 13 लोगों के पास कैसे पहुंचा, पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
थाईलैंड में अंधेरी पानी से भरी गुफा में फंसे बच्चों के पास जब ब्रितानी गोताखोर पहुंचे तो उन्होंने शुक्रिया अदा करने के बाद सबसे पहले यही पूछा कि हम बाहर कब निकलेंगे। गोताखोरों ने उन्हें बताया कि आज नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आज दिन क्या है। इस पर गोताखोरों ने कहा, सोमवार। आप यहाँ 10 दिनों से हो, आप बहुत मजबूत हो, बहुत मजबूत। थाईलैंड के चियंगरॉय स्थित टैम लूंग गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों और उनके कोच के जिंदा मिलने के समय का नाटक वीडियो थाईलैंड रॉयल नेवी सील ने जारी किया है। इन बच्चों को बचाने के लिए व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है जिसमें थाईलैंड की नौसेना, वायुसेना, पुलिस बलों के अलावा ब्रितानी गोताखोर और अमरीकी सैन्य बल भी जुटे हुए हैं। पूरा देश इन बच्चों के जिंदा मिलने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उनके जिंदा होने की खबर बाहर आई तो गुफा के बाहर मौजूद एक बच्चे की मां ने कहा, आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, मैं कब से अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि उसके जिंदा होने की संभावना 50% ही है। अब मैं बहुत उत्साहित हूँ, जब वो बाहर आएगा तो सबसे पहले मैं उसे गले लगाऊंगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। टैमलूंग गुफा घूमने आए ये बच्चे भारी बारिश के कारण गुफा में पानी भरने से भीतर ही फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर पूरे देश और दुनिया की नज़र थी। देशभर में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही थीं और प्रार्थना सभाएं की जा रही थीं। हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के अलावा रोबोट की मदद भी तलाशी अभियान में ली गई। अब बच्चों के जीवित मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की है। वहां हालात कितने मुश्किल हैं ये बता रहे हैं बचाव टीम का हिस्सा बेल्जियम के गोताखोर बैन रिमेंट्स। वो बहुत भीतर हैं और वहां सिर्फ तैर कर ही जाया जा सकता है। ये गुफाएं भूल भुलैया जैसी हैं। तापमान 21 डिग्री है और बहुत चिपचिपाहट है। ये छोटी छोटी सुरंगों की भूल भुलैया है जो कई किलोमीटर तक है। पहले दिन मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि अंधेरे की वजह से हम कुछ भी देख ही नहीं पा रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए चियांगराई के गवर्नर ने बचाव अभियान के अगले चरण के बारे में बताते हुए कहा, हम अब उनके पास खाना भेजेंगे लेकिन अभी हम नहीं जानते कि वो खा पाएंगे या नहीं क्योंकि उन्होंने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हम देखेंगे कि वो खाने को पचा पाएंगे या नहीं। अभी हमें बहुत कुछ करना है, उन्हें बाहर सुरक्षित निकालना है और सामान्य करना है ताकि वो स्कूल जा सकें। करीब 1000 लोगों के बचाव दल के अथक प्रयास से बच्चे मिल तो गए हैं, अब चुनौती उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की है जिसकी योजना बनाई जा रही है।
यानी संघर्ष अभी जारी है। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। अगली खबर भारत के राज्य राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 1% आरक्षण को प्रभावी बनाने का निर्देश जारी किया है लेकिन गुर्जर समुदाय इससे खुश नहीं है। गुर्जर नेताओं ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जुलाई की जयपुर यात्रा के दौरान ये मुद्दा उठाएंगे। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
आरक्षण की सूची में कभी गुर्जर पिछड़ा कहलाए तो कभी उन्हें अति पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, फिर आरक्षण में एक विशेष श्रेणी भी बनाई गई, लेकिन कभी कानूनी प्रावधानों ने रास्ता रोक लिया तो कभी प्रक्रिया में बाधा आ गई। अब सरकार ने कहा कि गुर्जर समेत कुछ अन्य जातियों को 1% आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया गया है। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी मीडिया से मुखातिब हुए और कहा, बाधाओं को दूर कर दिया गया है।
कुछ विषय ऐसे थे जिन विषयों को प्रक्रियात्मक होने के कारण से आदेश उनके नहीं निकल पाए। 1852 की सीमा को तय करते हुए जो उस समय तक जो विभिन्न विभागों का आंकड़ा लेकर हमने पेश किया था, राजस्थान सरकार को इनको नियुक्ति देने का किया और नियुक्ति के लिए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। हमने उसके तहत उनको नौकरी 1852 लोगों को दी। 2017 में फिर एक बिल लेकर के आए जिसमें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के नाम से एक विधेयक को पारित किया, इसमें 5% का था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो मैंने कहा कि आपको 50% से अधिक नहीं होना चाहिए उसकी अपनी एक व्याख्या उन्होंने की, उसके आधार पर हमने 1% का आदेश निकाला।
आरक्षण को लेकर अपने 70 से ज्यादा लोगों की मौत देख चुके गुर्जर समुदाय को लगता है कि वे अब भी वहीं खड़े हैं जहां से कभी चले थे। गुर्जर आरक्षण समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने बीबीसी से कहा, सरकार की ना नीति साफ है ना नीयत।
हमारी जो मांग जायज थी उसको सरकारों ने गुमराह किया है। भाजपा सरकार ने 3 बार विधेयक लाई, वो 50% से ऊपर का विधेयक था। हम लोग मांग कर रहे हैं हमें ओबीसी के अंदर वर्गीकरण दीजिए, वर्गीकरण करके रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन सरकार बार बार गुमराह करके हमारी मांग को, सही जो जायज मांग है उस जायज मांग से गुमराह कर रही है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारे हक के लिए जो भी करना पड़े हम लोग 13 साल से कर रहे हैं। हमारे संघर्ष में बहुत से लोग हमारे कुर्बान भी हुए हैं, लेकिन हम हमारा हक लेके रहेंगे।
गुर्जर समुदाय ने मुद्दा ऐसे वक्त उठाया है जब बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर यात्रा कामयाब करने में जुटी हुई है। गुर्जर नेताओं ने इस यात्रा में विरोध की बातें कही थी। गुर्जर नेता कहते हैं कि न्याय नहीं हुआ तो वे प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने मीडिया से कहा, बीजेपी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है।
आज जो सरकार स्पष्टीकरण जारी करे नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आगामी समय में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और गुर्जर समाज ने स्पष्ट कहा और चुनौती दी कि यदि आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का स्पष्टीकरण मंत्री जी दे रहे थे उनसे उनमें कॉन्फिडेंस तो कभी झलका ही नहीं। मुझे सरकार के मंत्रियों में जो कमिटीज बनी जिन्होंने जब जब इनके साथ समझौते किए तो सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है, लेकिन इनका एक कमिटमेंट था इस बार की 9 शेड्यूल में हम जुड़वाएंगे। अब सरकार केंद्र में इनकी है, राज्य में भी इनकी सरकार है, तो इनको अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, 9 शेड्यूल में उसको जुड़वा करके उस समस्या का निदान करना चाहिए जिसको लेकर के बार बार स्ट्रक डाउन होता है कोर्ट के माध्यम से।
आरक्षण की लड़ाई लंबी चली और कई मर्तबा सरकार ने गुर्जर नेताओं के हाथों में मांगे मंजूर होने के कागज भी थमाए, लेकिन गुर्जर नेताओं को लगता है कि उनके हाथ अब भी वैसे ही खाली हैं जैसे पहले थे। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
उधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल विधानसभा में कहा कि बस्तर के कई गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से ऐलान किया था कि 1000 दिन के भीतर देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी, और इस साल अप्रैल में उन्होंने दावा किया कि देश के हर एक गांव तक बिजली पहुंच गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दीपक बैज के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वीकार किया है कि अकेले दीपक बैज के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 18 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, जबकि 20 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाने की शुरुआत भी नहीं हुई है। 4 महीने पहले भी मुख्यमंत्री रमन सिंह ने माना था कि बस्तर के 122 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। जाहिर है, मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री के दावे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं,
प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में अब कोई गांव अविद्युतीकृत नहीं है। दूसरी ओर रमन सरकार बजट सत्र में भी और वर्षाकालीन सत्र में भी जवाब देती है कि अविद्युतीकृत गांव न केवल हैं, बल्कि उन गांवों की संख्या भी सरकार बताती है। रमन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को झुठलाने में लगे हैं। ये भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्थिति है।
गाँव में बिजली नहीं पहुंची, उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ के जिन गांवों तक बिजली पहुंची है वहां भी बिजली की कटौती जारी है।
सरप्लस स्टेट होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसानों को बिजली नहीं पहुंच रही है। राज्य बनने के 18 साल होने को है और छत्तीसगढ़ के गांव आज भी बिजली विहीन है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सरकारें सिर्फ आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाए हुए हैं, जबकि ये तमाम मोर्चों पे बुरी तरीके से विफल हुई है, चाहे वो रोजगार के सवाल हो, चाहे वो बिजली के सवाल हो, चाहे वो किसानों के आय के सवाल हो।
छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में उप महाप्रबंधक और प्रसार अधिकारी विजय मिश्रा भी मानते हैं कि राज्य के जंगल वाले इलाकों में बसे घरों तक बिजली पहुंचाने में मुश्किल आ रही है।
सघन वन वाले क्षेत्र हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां बिजली पहुंचाने में हमें दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 18 तक ऐसे सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पावर कंपनी को दिया है, जिसके अनुरूप हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं।
इस साल सितंबर तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का विद्युत विभाग का दावा कितना खरा उतर पाएगा, इसके लिए तो सितंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन बिजली विहीन गांवों की खबर से विपक्षी दलों को तो एक मुद्दा मिल ही गया है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
उधर उत्तर प्रदेश में एक और सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा क्यों नहीं करते हैं? वो अपने भाषणों में भी आमतौर पर अयोध्या या राम मंदिर का जिक्र नहीं करते हैं। हाल में मोदी अयोध्या के करीब मगहर के दौरे पर थे। इसके बाद से ये सवाल ज्यादा जोर से उठ रहा है कि क्या मोदी किसी रणनीति के तहत अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
28 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मगहर में भाषण दे रहे थे, तो वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित अयोध्या के लोग ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री अब तक यहां क्यों नहीं आए। उसी दिन अयोध्या में मिले एक साधु इस बात से थोड़े गुस्से में भी दिखे। उनका गुस्सा इस बात पर तो कम था कि प्रधानमंत्री अयोध्या अब तक नहीं आए, इस बात पर कहीं ज्यादा था कि मगहर तक चले गए लेकिन अयोध्या नहीं आए। बताया गया कि प्रधानमंत्री को मगहर यात्रा का सुझाव और आमंत्रण वहां के स्थानीय सांसद ने दिया था। अयोध्या से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह से मैंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या से अब तक कोई आमंत्रण नहीं मिला।
इन्विटेशन तो बहुत सारे गए, अब किसी ऐसे इन्विटेशन में तो प्रधानमंत्री आते जाते भी नहीं। पार्टी जो कार्यक्रम तय करती है उस हिसाब से आते जाते हैं, सरकार की आवश्यकता जहाँ है वहाँ जाते हैं। मोदी जी लिए पूरा देश बड़ा है, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जाते हैं, वहाँ भी आएंगे।
दरअसल अयोध्या और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संबंध भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक पहचान दिलाने में अयोध्या और राम मंदिर की कितनी भूमिका रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री रहते कभी अयोध्या आए और न ही 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अयोध्या यात्रा की। लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद और अम्बेडकर नगर की रैलियों में वो जरूर गए थे। उसी दौरान एक जनसभा में उन्होंने ये कहकर एक तरह से राम मंदिर को पार्टी की प्राथमिकताओं से ही लगभग खारिज कर दिया कि पहले शौचालय फिर देवालय। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
नरेंद्र मोदी वहां पर खुद नहीं जाके योगी को लगातार भेज रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को, यानी वो मुद्दा लाइव है। लेकिन उस मुद्दे में वो अभी नहीं है, वो इस मुद्दे के फैसले के बाद विजेता के रूप में वहाँ अवतरित होंगे, वहाँ उतारे जाएंगे, वहाँ प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो लोगों को जो आज सोच रहे हैं लोग कि अयोध्या उनके प्रोजेक्ट एजेंडे में नहीं है, उन लोगों को लग जाएगा कि वो इस कारण से यहाँ नहीं आ रहे थे। तो उसी में कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक मंदिर का फैसला नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगा, तो इस तरह की तमाम बातें चलेंगी और उसमें उनको पॉलिटिकल गेन होगा।
प्रधानमंत्री के अयोध्या न आने के पीछे जो भी वजह या मजबूरियां हों, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों से बात करने पर ऐसा लगता है कि उन्हें इसका मलाल है। अयोध्या में रहने वाले आरएसएस के प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं,
यहीं से कुछ दूरी पर जब वो आते हैं 150 किलोमीटर की दूरी पर, तो लोगों को ये लगता है कि भाई एक दुख उनके अंदर हृदय में समाहित होता है। लेकिन अब मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो ये व्यक्तिगत उनका अपना अपनी सोच होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि तमाम धर्म नगरिया जाते हैं, कोई शिव को पूछता है, कोई जो है कृष्ण को पूछता है, लेकिन राम को नहीं पूछता।
शरद शर्मा बताते हैं कि महंत नृत्य गोपाल दास के जन्म दिवस पर दो बार प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन इस आमंत्रण के बावजूद उन्होंने अयोध्या आने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अयोध्या की इस कथित उपेक्षा की चर्चा क्या बीजेपी नेताओं, आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों, आस्थावान हिंदुओं के बीच नहीं होती होगी, जो बीजेपी को एक तरह से राम मंदिर समर्थक पार्टी के तौर पर देखते हैं? इस सवाल के जवाब में पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का जो भी मैक्सिमम एग्जामिनेशन है हार्डकोर हिंदुत्व का, वो गुजरात में पास कर चुके हैं और 12-13 साल की सरकार में 3 इलेक्शन के दौरान हर हथियार अपनाने के बाद भी वो हिंदुओं के नेता के रूप में एस्टेब्लिश हो गए।
बहरहाल अयोध्या के लोगों को अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी यहाँ जरूर आएंगे। जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो यहाँ आएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि ये उनकी आस्था के तहत होगा या फिर चुनावी विवशता के। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
सुबह के 6:49 और 6 सेकंड हो चुके हैं। हमारे साथ ही दिलनवाज पाशा स्टूडियो में तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं बताने के लिए आपको अखबारों की सुर्खियां। जी दिलनवाज,
वात्सल्य, दिल्ली देश और दुनिया को जिस खबर ने स्तब्ध कर दिया, एक घर में 11 लोगों की लाशें, उसी के अलग अलग पहलू आज के अखबारों में अलग अलग तरीके से हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि छोटे भाई ने लिखी थी सामूहिक मौत की पटकथा, तो नवभारत का कहना है 11 का फेर, बुराड़ी में मरने वाले 11, पाइप 11, एंगल 11 और घर में खिड़कियां भी 11। इसके अलावा आज का अमर उजाला बता रहा है कि बड़ पूजा के बहाने ललित यानी जो छोटे भाई थे उन्होंने सबकी जान ली। एक रजिस्टर परिवार में रखा गया था जिसमें दिन भर का ब्यौरा दर्ज होता था। इसमें लिखा था, अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी, उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना, मैं आकर तुम्हें उतार लूंगा, औरों को भी उतारने में मदद करूंगा। जब हम फंदे पर लटकेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे और भगवान हम सबको बचा लेंगे। तो ये धार्मिक पहलू जो इस खबर का है।
जी, जनसत्ता ने भी इस खबर की हेडलाइन दी है कि पोस्टमार्टम में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध,
और अब पुलिस जो है इस परिवार का ब्रेन वॉश करने वालों को ढूंढ रही है, ये आज का दैनिक भास्कर बता रहा है। इसके अलावा जिक्र करना चाहूँगा द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के धुले में जिन 5 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मारा गया था, उन्हें बचाने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो 2 लोग जिंदा थे, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के आगे जो पुलिस का दल था, 8 लोग जो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे वो बेबस हो गए, और भीड़ ने तब तक पुलिस को उन लोगों को नहीं सौंपा जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि सब लोग मर गए हैं। तो ये भीड़ किस तरीके से इस देश में बच्चा चोरी की अफवाहें व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हैं, और जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, इंसानी जान सबसे को बचाना सबसे अहम है। अगर और अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसे आप रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करें। महाराष्ट्र में इस तरीके की अफवाहों ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है, 14 मामले हुए हैं हमले के, ये भी आज का द इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है। और अब जिक्र करूंगा हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती है किसानों की जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने पर। रिपोर्ट बता रही है कि जो लागत होती है किसानों की उसके बदले फसल का दाम कम से कम 150% करने पर सरकार जो है विचार कर रही है, और इसका ऐलान भी जल्द ही किया जा सकता है।
एक खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो हलफनामा देकर बताए कि कब होगी लोकपाल की नियुक्ति।
जी बिल्कुल वात्सल्य, और मंदसौर का जो बलात्कार का मामला है जिसने पूरे देश को हिला दिया, बड़े प्रदर्शन हुए, उसके बारे में नई दुनिया बता रहे हैं कि पुलिस 10 दिन में चालान पेश करने की तैयारी कर रही है और ट्रायल को 1 महीने में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की सुर्खियों के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक खास रिपोर्ट, दिल्ली के शिव विहार की पहचान कैंसर कॉलोनी के तौर पर होने लगी है। यहां रहने वालों का दावा है कि अवैध डाइंग फैक्ट्रियां कैंसर की वजह बन रही हैं। बीबीसी संवाददाता बुशरा शेख ने इस इलाके का दौरा किया, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
मेरा ऑपरेशन पहले हुआ था, उनसे मुझे लग रहा था कि मैं जाऊंगी, बस हम दोनों आपस में ये बात करते थे कि पता नहीं भगवान कब बुलावा हम दोनों में से कौन पहले जाए।
51 साल की पिंकी शर्मा की आंखों में आंसू है। वो बताती हैं कि उनके पति कांति स्वरूप को कैंसर था। 1 साल पहले पति को खो चुकी पिंकी खुद भी स्तन कैंसर से लड़ रही हैं। फिलहाल वो पीने के पानी की सप्लाई का काम करती हैं। उनके 2 विवाहित बच्चे हैं, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा रही हैं और अपना पैसा बच्चों के लिए बचा रही हैं। इसकी वजह वो बताती हैं,
अगर अपने ऊपर खर्चा करती हूँ तो घर पे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहता, और अगर नहीं करती हूँ तो जीने की उम्मीद हर किसी को मरते टाइम तक भी यह रहता कि हमें जिंदगी और दे चाहे किसी भी कंडीशन में।
ये कहानी अकेले पिंकी की नहीं है, इस इलाके में आपको पिंकी जैसे कैंसर पीड़ित हर दूसरी तीसरी गलियों में मिल जाएंगे। हालांकि प्रशासन के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। ऐसे ही एक कैंसर पीड़ित 17 साल के आलोक है।
तो इलाज करवाया 2-3 साल, एक के बाद दूसरी फुसन गई थी अपने सोने वाली भी, फिर मैं जीती रहा उसका, फिर तो अपने साथ का कहानी बोल रही थी। उस टाइम में दुख तो बहुत होता है, मगर पापा ने मजबूरी थे कट नहीं बोला, कटवा लो नहीं तो फिर क्या फायदा मैं मर जाऊँ। इससे
40s के डॉक्टर प्रदीप जैन बताते हैं कि एक ही इलाके में इतने सारे कैंसर के मामले सामने आने की वजह कपड़ों को रंगने वाले केमिकल हो सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे देश में इसको लेकर कोई रिसर्च नहीं हुई है।
कोई भी केमिकल किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो इनहेलेशन की वजह से लंग्स में सांस लेने की वजह से अंदर जाए, या फिर स्किन के थ्रू कोई एब्जॉर्ब हो, या खाने की नली के अंदर वहां से जाए, तो वो अगर बहुत भारी मात्रा में जाए तो नुकसान कर सकता है। थ्योरेटिकली देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारा कैंसर जनरेट कर सकते हैं। क्लोथ्स को डाई करने की कोई केमिकल्स हैं, ये सारे पानी के रास्ते दे कैन गो इनटू द जो मेन नाला होते हैं उनके, और अंडरग्राउंड वाटर में दे कैन गो, एंड वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो जो केमिकल्स जब लोग उसको पीते हैं पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को या किसी और किसी वाटर सोर्स से वो जाते हैं, तो शरीर के अंदर जमा होकर दे कैन कॉज कैंसर।
ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस मामले की भनक नहीं है। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद ही संज्ञान लिया और सीबीआई को जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने यहां पानी के सैंपल लिए जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। पूर्वी दिल्ली के मेयर बिपिन बिहारी कहते हैं कि इस मामले में अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई है।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली सरकार ने एक सर्वे कराई, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा कि 239 फैक्ट्रियां जो है अवैध चल रही हैं। जो अवैध चल रहे थे इनको चालान काटा गया है और इनको सीलिंग कर दिया गया है, और इसको करने इसकी बिजली पानी काटने का सारी चीजें बंद करने का दोनों जोन हमारे साउथ जोन और नॉर्थ जोन है, ये दोनों जोन के डीसी को भी ये आदेश दे दिया गया है।
अवैध फैक्ट्री जरूर सील कर दी गई है, लेकिन चोरी छिपे ये काम अभी भी जारी है। हमने ऐसी ही फैक्ट्रियां चलाने वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक साथ कई सदस्यों को कैंसर है और उन्हें इलाज के साथ साथ सरकार से मदद का इंतजार भी है।
एक बात कहूंगी, मोदी जी से भी कहूंगी कि वो इसका वेट ना करें कि मतलब जो कैंसर पीड़ित है वो मर के ऊपर पहुंच जाए तब उनका मुआवजा मिले।
बुशरा शेख, बीबीसी दिल्ली।
बुशरा शेख की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रूस में जारी फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल बेल्जियम ने एक ऐसे मुकाबले में जापान को 3-2 से हराया जिसमें वो एक समय 52 मिनट तक 2-0 से पिछड़ रहा था, लेकिन उसके बाद 69वें मिनट में वर्टोंगन ने गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। बस इसके बाद तो जैसे बेल्जियम के खिलाड़ियों को पंख लग गए। 74वें मिनट में फेलिनी ने गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर किया, तो अतिरिक्त समय के 4th मिनट में चार्डली ने गोल कर जापान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना करेगा। ब्राजील ने भी कल मेक्सिको को 2-0 से बात दी। आज स्वीडन का सामना स्विट्जरलैंड से और कोलंबिया का सामना इंग्लैंड से होगा। वहीं कल से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन शुरू हुआ, जहां पिछले चैंपियन और शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने सर्बिया के डुसान लोजोविक को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। पिछले उप विजेता क्रोशिया के बारिन चिलिच ने जापान के योशिहितो निशियोका को 6-1, 6-4, 6-4 से हराया, लेकिन छठी वरीयता हासिल बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका से 1-6, 7-6, 7-6, 6-4 से हार कर बाहर हो गए। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
थाईलैंड की एक गुफा में 9 दिन से फंसे 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच के जिंदा मिलने के बाद अब बचाव दल के सामने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती है। जर्मनी के गृहमंत्री हॉस ज़ेहोफर ने चांसलर एंगेला मर्केल के साथ हुई लंबी बैठक के बाद प्रवासी मुद्दे पर पद छोड़ने की अपनी धमकी वापस ले ली है। मैक्सिको के नए निर्वाचित राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रवासन कम किया जा सके। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की सिंधु वासनी ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।